الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی کا تعلق دو چیزوں سے بنیادی طور پر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected brothers and elders, the relationship of the life of a human being is with two things:
نفع اور نقصان،
profit and loss.
اور یہ دو قسم کا ہے.
And it is of two types:
دنیا کا نفع اور دنیا کا نقصان.
It's profit of this dunya and loss of this dunya.
اور آخرت کا نفع اور آخرت کا نقصان.
The profit of akhirah and loss of akhirah.
انسان کو جو اس کے نفع کی چیز ہے وہ چاہیے.
And human being needs a thing that benefits and profits him.
اور جو اس کے نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس سے اس کو بچاؤ چاہیے، حفاظت چاہیے.
And he needs protection from things that causes loss to him.
عام طور پر عربی میں فائدے کے لیے لام کا استعمال ہوتا ہے اور نقصان کے لیے علا کا ہوتا ہے.
In Arabic for the profit lam is used and for the loss علا is used.
جیسے قرآن پاک میں لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت.
لیکن دا قرآن اس لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت.
لہا اس کے نفع کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اس کو نقصان اس کا ہوگا جو اس نے کمایا.
It says that he benefits from what he has earned and then he will be at loss from what he has earned.
اسی لیے پہلے زمانے کے جو ہمارے فقہا ہیں متقدمین، انہوں نے خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف ہی یہ کی ہے، معرفت النفس ما لها وما علیها. ترجمہ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ فقہ کی تعریف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نفس کا پہچان لینا اس چیز کو جو اس کے نفع کا ہے، تو اس کی نفع کی چیزوں کو پہچان لینا، اور پہچان لینا اس چیز کو جو اس کے نقصان کی ہے.
That it is basically the person recognizing the thing that is beneficial for him, the thing that is harmful for him.
آخرت کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ تو وحی کے ذریعے سے ہی انسانوں کو پتا چلا.
What is the loss and benefit of the akhirah? This can only be known through the wahi.
دنیا کا نفع و نقصان کیا ہے، یہ وحی کے ذریعے سے بھی پتا چلا اور لوگوں کو ان کے تجربے سے اور مشاہدے سے بھی پتا چلتا ہے.
And the benefit and loss of this dunya is also known from the wahi and also experience of the people that they have in this dunya.
اور بغیر ایکسپیرینس کے لوگوں کے اپنے جو مشاہدے، تجربے، تحقیق ہوتی ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ذاتی طور پر ایکسپیرینس نہیں بھی ہوا تو کسی کا بھی ایکسپیرینس ہو.
So in addition to the self experience that a person have, it can also be derived from the experience of others.
تو جن لوگوں کے پاس میں وحی کا علم نہیں آیا، انہوں نے اس دنیا میں جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنا تعلق کیسا جوڑیں اس فکر میں پڑ گئے. جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس کے نقصان سے اپنے کو کیسا بچائیں اس کی فکر میں خود سے پڑ گئے.
And the people who did not have the knowledge of wahi in this dunya, they were concerned of how they can attach themselves with the things that are going to benefit them and how to remove themselves away from those things that are going to harm them.
یہی سے انسان کے کسی کے سامنے ذلیل ہونے کا اور کسی کے سامنے اپنی محتاجگی کو ظاہر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا.
And this is where it all started, that the human being presents himself as a needy in front of somebody.
کیونکہ انسان اتنا تو اپنے کو سمجھ جانتا ہے کہ وہ محتاج ہے.
The human being knows that he is needy.
اور یہ محتاجگی دو سائٹ سے ہے جیسا ابھی بتایا گیا.
And these need is from two sides as we just told.
اب اس محتاجگی کو دور کرنے کے لیے اس کو چھوٹا ہونا پڑے گا، تو اس کو ذلیل ہونا پڑے گا.
As to fulfill this need, he has to make himself smaller and lower.
تو اس سے دو چیزیں وجود میں آئیں.
And the two things came into existence because of this.
ذلیل ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے عبادت وجود میں آئی.
And to display the disgrace, the ibadat has come into existence.
اور اپنی ضرورت پوری ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے استعانت وجود میں آئی, مدد چاہنا وجود میں آیا.
And to express that him being needy and asking for the need, asking for help has come into existence.
تو ہوا یہ کہ انسان نے جس چیز کو نفع پہنچاتے ہوئے دیکھا اس کے سامنے ذلیل ہوا اور اسے مانگنا شروع کر دیا.
And whoever the human being has seen the prophet coming from, he basically lowered himself and disgraced himself in front of that and start asking from it.
اور جس چیز سے نقصان ہوتا ہوا اس کو معلوم ہوا, اس کے سامنے ذلیل ہوا اور اسے پناہ مانگی.
And the thing that is going to cause harm from him, he has disgraced himself there and then started asking for protection.
ہم لوگ مختلف کنٹریوں کے ہیں, ہم انڈیا سے ہیں, ہم انڈیا میں اس چیز کا مشاہدہ روز کرتے ہیں.
And we are from different countries and we are from India and you can see this in every day in India.
ہمارے پاس یہ ہے کہ ہر نفع دینے والی چیز کو انسان پوچھتا ہے.
And everything that a person sees like deriving benefit from, he worships it.
پانی کی پوجا کرتے ہیں,
they worship the water.
سورج کی پوجا کرتے ہیں,
they worship the sun.
درختوں کی پوجا کرتے ہیں,
they worship the trees.
سانپ کی پوجا کرتے ہیں,
they worship the snake.
بچھو کی پوجا کرتے ہیں,
they worship the scorpion.
سونے چاندی کی پوجا کرتے ہیں,
they worship the gold and silver.
زمین کی پوجا کرتے ہیں,
they worship the land.
ہر نفع پہنچانے والا, جہاں سے نفع نظر آتا ہے وہاں کی پوجا کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں. اور ہر وہ چیز جو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے جو ہے نا, اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں اور اسے پناہ چاہتے ہیں.
And everything that they see benefit coming from, they disgrace themselves, lower themselves in front of it and ask for it. And everything that they see the loss are coming from, they also lower themselves and disgrace themselves and seek protection from it.
ان لوگوں کے اندر خود یہ متفق علیہ بات ہے کہ ہمارے 33 کروڑ خدا ہیں.
And this is something that is unanimous among them that we have 330 million gods.
وہ خود ہی مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے اتنے خدا ہیں.
And they themselves believe in it.
وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو سنبھالنے کے واسطے اتنے خدا چاہیے.
He said that just to take care of one person you need this many gods.
اور ایک جملہ مشہور ہے ان کے پاس بھی ہے, ہم مسلمان بھی جانتے ہیں کہ جتنے کنکر اتنے شنکر.
And this statement is very famous, then they also know that how many grains of sand you have, that many gods they have.
اور یہ پوری دنیا میں جب توحید نہیں ہوتی ہے تو انسان کا حال ہوتا ہے.
And in all over the world when there is no tawheed, this is what happens to the human being.
انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیج کر یہی بات سمجھائی.
Allah سبحانہ وتعالی sent انبیاء علیہ السلام to explain this thing.
اور آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین کے حیثیت سے مبعوث فرمایا اور یہی تعلیم دی.
And at the end Allah سبحانہ
وتعالی توحید کی تعلیم دی, یہی ثمرہ توحید کی تعلیم.
And at the end Allah سبحانہ وتعالی sent رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and gave the same تعلیم, same education of توحید.
اور وہ یہ ہے کہ جتنی شکلیں نظر آتی ہیں نفع کی, نفع وہاں نہیں ہے.
And that توحید is that all these things that we see which are beneficial, this is not where the benefit is.
اور جتنی چیزیں نقصان کی شکلوں میں نظر آتی ہیں وہاں نقصان نہیں ہے.
And all the things and shapes where we see that we will derive loss from, that's not where the loss is.
پانی کے اندر اگر چاند نظر آ جائے تو پانی میں چاند ہوتا نہیں ہے.
If you see a moon, reflection of moon in the water, there is no moon in the water.
تو ایسے یہ جتنی شکلیں ہیں ان شکلوں سے نظر آتا ہوا ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک غیبی ہاتھ ہے, طاقتور ہاتھ.
And similarly, all the things that we have, even though we see that we derive benefit from it, but actually there is no benefit there, there is a hidden hand behind this.
اس لیے توحید کی تعلیم کے ذریعے سے, لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے پوری مخلوق کے تأثر کو انسانوں سے ختم کیا گیا.
That's why from the teachings of tawheed, the effect of all the makhluq and creation has been taken away from the hearts of the human being.
اور وحی کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس پوری مخلوقات کے اندر سب سے بڑے مرتبے کی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے.
And through the education of wahi, it was taught that out of all these creation, the one which is the most best is the human being.
چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں.
Even though it might be the angels.
اسی لیے فرشتوں کی تفصیل تک بتائی گئی.
And that's why the description of the angels have been explained.
اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا سجدہ کرنا بتایا گیا.
That's why it was shown through wahi that Adam علیہ السلام was given, the angels were asked to give the سجدہ تو آدم علیہ السلام.
اور وجہ بھی بتا دی, لاجک بھی سمجھا دی کہ ان کو کیوں حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں, ان میں کیا خصوصیت ہے کہ جو آدم کو بھی سجدہ, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا گیا.
Not only that but also the reasoning was explained that why the angels were asked to do the sajda to Adam alayhi salam.
تو اس کو مسجد ملائک بنایا گیا. फरिश्ते जिसको सजदा करें वो मखलूक है ये.
And it says that the human beings are made such a in a good position that they were the human beings the ones with angels were asked to make sajda to.
और मस्जूद होना अलामत है इस बात की कि उनको इसके छोटे बनाया गया और इनके ताबे बनाया गया.
And this is a sign that the angels are made lower than human beings and made subservient to human beings.
और यह भी लिखा है उलमा ने कि फरिश्तों को सजदा कराने की एक खास वजह यह है कि पूरी मखलूक में सबसे ताकतवर मखलूक फरिश्तों की होती है.
And scholars have explained that the reason why the angels were asked to do the sajda that out of all the creation the most powerful creation are angels.
जाहिर है कि हमें बताया गया है कि एक फरिश्ते की फूंक से आसमान और जमीन का निजाम खत्म हो जाएगा.
That's why we have been shown that just by blow of one angel the whole system of the earth and skies will be destroyed.
पूरी इंसान मिलके अगर हिलाना चाहे बजाहिर सूरज को तो नहीं हिला सकते मगर इसराफील अलैहिस्सलाम तो फूंक के उड़ा देंगे उसको.
So if all human beings want to shake the sun they will not be able to shake the sun but Israfil alaihissalam will just blow and then everything will be destroyed.
Pure yani sitaron ka nizam darham barham aasman zameen darham barham sare insaan khatam ho jayenge sare jinnat khatam ho jayenge sari makhlooq khatam ho jayegi samandar jo hai usme aag lag jayegi pahad jo hai na wo ud jayenge.
He said that all the stars and moons and the suns and human beings and the and the seas and the mountains everything will be destroyed and everything will be flying
ek farishte ki phook se.
And that is with just blow of one angel.
Isliye kitabon mein likha hai ki Israfil alaihi salam Hazrat Jibril alaihi salam se 12000 guna bade hain.
That's why it's written in the books that Israfil alaihi salam is 12000 times bigger than Jibril alaihi salam.
और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में खड़े हों तो पैर उनके सातवें जमीन पे जाए और सर उनका सातवें आसमान पे जाए.
And if Jibril अलैहिस्सलाम come in his real form, his legs will be in the seventh earth and his head will be in the seventh sky.
ऐसी बड़ी मखलूक को अल्लाह पाक ने इस बात का पाबंद बनाया कि वो आदम को सजदा करें.
And such a big makhluk and strong makhluk, Allah Subhanahu wa Taala has made them do sajda to Adam.
ये बताने के लिए कि मखलूक में सबसे बड़े मर्तबे की मखलूक कौन सी है.
So just to show that out of the creation, who is the best of the creation.
मगर इसके पास अगर वो इल्म ना हो जिसकी वजह से इसको शर्त मिला फजीलत मिली अगर वो इल्म ना हो तो फिर ये सबके सामने जलील होता है हालांकि सब इसके सामने जलील होना चाहिए.
And if this human being does not have the knowledge which will basically teach him why he is superior, then this human being will become subservient and will lower himself in front of all other creation.
Isliye Allah tbarak wa taala ne puri makhlooq ke bare mein farmaya ki ye sab tumhari khidmat ke liye.
That's why Allah subhanahu wa taala has said about all the other creation that this is for your servitude.
Isliye la ilaha illallah ke zariye se jis iman ke banane ko kaha gaya wo ye कि तुम सारी मखलूक का तासुर अपने अंदर से निकालो.
So that's why through la ilaha illallah the thing that is desired is you take the effect of all the creation from your heart.
नफा नुकसान किसी के हाथ में नहीं है.
The profit and benefit and loss is not in no one's hand.
ना उनके हाथ में है जो नफा के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है.
It's not even in the hands of those people who have been created for your benefit. Those things that who have been created for human beings.
Yani hum jante hain ki wo nuksan ki shakle hain phir bhi unke unse nuksan mutalliq nahi hai.
Even though we know that the things will cause harm even then the harm is not related to them.
Saaf nuksan ki cheez hai magar nuksan nahi hai uske paas.
If the snake is something of harm but there is no harm in snake.
Bichhu nuksan ki cheez hai nuksan nahi hai wahan pe.
The scorpion is thing of harm but there is no harm in scorpion.
Aag mein nuksan hai jalane ka lekin nahi hai wahan par.
There is harm of being burned in fire but there is no harm there.
छुरी काटती है लेकिन नहीं है वहां पर काटने वाली बात.
Knife cuts but there is no harm in no cutting in the knife.
छुरी जब ही काटेगी जब अल्लाह का हुक्म उसको होगा काटने का.
The knife only will cut when it is command from Allah Subhanahu wa Taala to cut.
आग से जब ही जलेगा जब अल्लाह का हुक्म जलने का वहां से आएगा.
A person only get burned from fire only when Allah Subhanahu wa Taala gives the command for it to burn.
ऐसे ही तमाम नुकसान की चीजें हैं.
And similarly everything else which are the things of harm.
और इसी तरह नफा की शक्लें हैं.
And similarly things which are beneficial.
मगर इंसानों के अंदर फिर दो किस्में
हैं. And human beings there are two types.
एक किस्म तो वो है कि नबियों की तालीमात से वो बुतपरस्ती से बच गए.
And there are people, one type is those people who because of the teachings of the prophets, they were saved from the idol worship.
इसी वजह से अगर उनसे कहो कि साहब ये बुत है ये बुत है ये बुत है इसके सामने सजदा करो इसकी इबादत करो तो नहीं करेंगे कि हम नहीं बुत परस्ती नहीं करते.
So that's why if you ask them to bow in front of the idols, they will say that we don't worship the idols will don't bow in front of them.
Magar la ilaha illallah ke mazmoon ki takrar nahi karne se bhool paida ho jati hai.
Because not repeating the topic of la ilaha illallah again and again things people tend to forget.
Us bhoolne ka natija ye hota hai ki kisi but ke samne to sajda nahi karte लेकिन नफा और नुकसान के लिए जहन वही काम करता है दूसरी चीजों में, बुतों के अलावा.
He says that the harm of that forgetting is that even though they do not bow in front of the idols, but the other things that they perceive the harm and benefit from, they be subservient and bow in front of them.
हमारे पास एक तबलीगी आदमी थे, वो बयान करते थे तौहीद में, तो एक मिसाल देते थे.
So he said that we have a brother of tabligh and he used to give this example.
कहले कि अगर कोई हमारे सामने बुत रख दे सोने का और कहे कि इसको सीधा करो तो हम नहीं करेंगे.
If somebody puts an idol of made out of gold and asks you to bow in front of them and do sajda, they'll not do sajda to it.
लेकिन अगर उसको तोड़ के पीसेस बना दिए.
If you break it and make it pieces.
और उसके बाद पूछे कि ये पीस से कुछ काम बनता क्या है तुम्हें? हाँ, इससे बड़ा काम बनता है.
And then you ask him if this piece is of any benefit or any, then you say yes, this is definitely beneficial.
ये सोने का पीस है, गोल्ड है ये, इससे बड़ा फायदा होता है.
He said this is the piece of gold and it is very beneficial.
तो नफा और नुकसान पूजा नहीं करने के बावजूद चीजों से कायम हो गया.
It says that even though a person does not worship it, but the establishment of benefit and harm related to the things is established.
इसलिए ईमान वालों का ईमान भी मुतासिर हो गया.
That's why the iman of the people of iman itself is affected.
ईमान वाले बजाहिर बुतों के सामने सजदा नहीं करते.
The people of iman do not do the sajda to the idols.
मगर जहां जहां से इनको नफा नजर आता है वहां से मुतासिर होने की सिफत है.
And but wherever they see benefit coming from, they get affected by it.
और जिन जिन के हाथ में ताकत आदमी देखता है, पावर देखता है, उनसे डरता हुए सही आदमी जैसे कोई बुत से डरता हो.
And says that similarly, wherever he see the power, he fears from it as if he fears with the idol.
जो मखलूक में बड़े ओहदेदार हैं उनसे डरना शुरू हो जाएगा.
And the people who are high position, he'll start fearing with them.
जो हाकिम है उनसे डर जाएगा.
The people who are rulers, he'll be fearful of them.
अरे भाई उनको नाराज मत करो, वो अगर नाराज करेंगे तो चाहे उसकी वजह से ईमान ही छोड़ देना पड़े मगर उनको नाराज होने नहीं दे सकता बंदा.
He said that he doesn't want to displease them even though if he have to, you know, go with the iman, but he don't want to displease them.
पैसे की शक्लें हैं वहां से आदमी मुतासिर हो जाएगा.
And then wherever there is the money coming from, it gets affected by that.
तो ला इलाहा इल्लल्लाह की इस मेहनत के जरिए से जो चीज चाही जा रही है वो यह है कि हर मखलूक के तासुर से अपने दिल को खाली करके अल्लाह की अजमत और अल्लाह की खशियत दिल में लाना.
So the effort of la ilaha illallah, what is desired, is we empty our heart from the effect of all the creation and bring the effect of Allah subhanahu wa ta'ala in our heart.
किसी के हाथ में नफा नुकसान नहीं है.
That nobody has any benefit or loss.
चाहे शक्ल कैसी ही क्यों ना हो उसकी.
Even though whatever shape or form it might be.
और कयामत जैसे जैसे करीब आएगी सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम ईमान वालों को पेश आएगा.
As we get closer to the qiyamah, this is basically the problem that the people of iman will face.
दज्जाल को हमारे खाने पीने से कोई गरज नहीं है.
दज्जाल doesn't worry about our food and drink.
बल्कि जो उसकी बात मानेगा उसको खाना पीना और ज्यादा देगा.
People who obey him, he will give more food and drink. Give him food and drink to them.
उसको मसला ईमान से है.
And his problem is with iman.
वो ईमान खराब करने के काम करेगा.
And he will do the things which will spoil the iman.
वो चाहेगा कि अल्लाह से हटकर अपना यकीन रखो.
He basically would like that you move yakin from Allah to something else.
तो इसलिए कयामत के करीब खासतौर पर जब फितनों का जमाना आएगा तो जितना ईमान पर कलमे पर मेहनत होगी उतना ईमान बचेगा.
That's why as you get closer to the qiyamah and when you see all these fitnas coming up, the person who makes the effort on iman, that is how much he will be saved from.
हज़रत उस्मान رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا وہ بہت افسوس میں صدمے میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے, پوچھا کیا بات ہے بہت زیادہ صدمے میں ہو, تو کہنے لگے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے और हमने पूछा ही नहीं कि इसकी नजात किस में है, हमारी नजात किस में है, इस अमरी से नजात, फितने से नजात की शक्ल क्या है, मुराद वहां पर फितना है, फितने से नजात की शक्ल क्या है. तो उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने पूछ लिया है, फरमाया नजात कलमे में है, ला इलाहा इल्लल्लाह में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
The story is very famous about Usman radiallahu ta'ala, the demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was sitting with a lot of sorrow and grief, and Hazrat Umar radiallahu ta'ala saw him and said that I see you very grieved, what is the matter? He said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has passed away. We didn't ask him that what is the solution to all these fitnas and trials. Umar radiallahu ta'ala said that I asked him, and he said the close meaning of which that all the fitnas and trials, the way out of that is in la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, that's iman.
और इतने ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हालात पेश आएंगे दज्जाल जैसे जैसा करीब आएगा, स्पेशल जब दज्जाल आ जाएगा जब, कि बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को अपना ईमान बचाना.
As it gets closer to the qiyamah, it says that the things and situation will be so dire that it will become very very difficult for them to protect their iman.
हत्ता के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन समिया अमीनकुम खुरूजहु फलयनअ अनहु, जो तुमसे तुम में से उसके खुरूज को सुने वो हट जाए, सामना ना करे, क्योंकि सामना करने के बाद में अपने ईमान को बचाना आसान नहीं रहेगा.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट्स व्हाई सेड दैट व्हेन समबडी हियर्स दैट दज्जाल हैज कम आउट, यू जस्ट मूव अवे फ्रॉम इट, डोंट यू नो फेस हिम, बिकॉज़ व्हेन समबडी फेसेस हिम इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सेव ईमान.
वो यूं कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो तुम मान लोगे, कम से कम फिर तो मुझ पर यकीन कर लोगे ना. तो आदमी कहेगा फिर तो यकीन कर लूंगा, क्यों नहीं करूंगा. तो वो शयातीन को उसके माँ बाप की शक्ल में, उसके भाइयों की शक्ल के अंदर ले आएगा और उसी की आवाज में वो लोग बात करेंगे और ये बताएंगे हम तेरे बाप हैं, हम तेरी माँ हैं. अब बताओ कि कैसे आदमी को कंफ्यूज करने वाली बात होगी.
Person that if I bring back your father and mother, will you believe me? Then he will use the shayateen to bring his father and mother back, and they will be talking to him in their voices. So just imagine how big a difficult test this will be.
खाने का ताल्लुक दिखा देगा कि मुझसे खाना है, पीने का ताल्लुक दिखा देगा पानी का कि मुझसे है, मौत और हयात दिखा देगा कि जिंदगी का मैं मालिक हूँ, मौत का मैं मालिक हूँ. एक आदमी को काटेगा और दरमियान में से उसके गुजर जाएगा और पहाड़ के उतना फासला करके दोनों में, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में, एक पीस उधर रखे एक पीस इधर रखे, बीच में चलेगा, फिर इंसानों को जोड़ देगा, कहेगा और किसको खुदा मानना है तुमको, फिर मुझे मानो तुम.
He says that he will explain, he will show that the food and the drink is from him, and even the life and death is from him. He will take a person, cut him into two halves, and will put one half on one side of the mountain, one half the other side. He will walk in between and then bring it back to life. He says that, look, I give water and food and life. Now, what else do you want in a God? So I'm your God.
Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam farmaya ke kuch moti moti cheez hai, yaad rakho. Usme se farmaya ke tumhara khuda aib wala nahi hai. इन रब्बकुम लैसा बिअअवर, वो अवर है, वो काना होगा और तुम्हारे परवरदिगार में कोई आयब नहीं है.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट यू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इट सेज द फर्स्ट थिंग इज अल्लाह सुब्हानहु व तआला डज नॉट हैव एनी ब्लेमिश, एंड इट सेज दैट वेयर एज दज्जाल ही विल हैव अ ब्लेमिश बिकॉज़ ही विल बी ओनली वन आई.
तो ईमान वाला फौरन पहचान लेगा कि भाई आयब वाला तो अल्लाह तबाराक व तआला नहीं होता, ये तो अपने खुदाई का दावा कर रहा, कुछ भी दिखा ले है तो ये आयब वाला.
He says that the person of Iman will immediately recognize him. He will say that Allah subhanahu wa ta'ala does not have any blemish. Whatever Dajjal says, but he still have a blemish, so he cannot be the God.
Hamara Allah to mahdood nahi hai kisi cheez mein. Isi wajah se surat se paak hai. Allah tabarak wa ta'ala insaan madde ki kisi surat se paak hai. Surat shakal nahi hoti Allah tabarak wa ta'ala. To jo surat shakal mein aake batayega ki main ye kar sakta hoon, wo nahi ho sakta khuda.
He says similarly, Allah subhanahu wa ta'ala does not have a shape or form, and Allah subhanahu wa ta'ala is not limited. That's why the believer will immediately after looking at him will believe that Allah subhanahu wa ta'ala, because will not have a shape or form, that's why Dajjal cannot be the God.
इसलिए ये चीजें ज़िंदगी के अंदर बहुत पेश आएंगी मेरे दोस्तों.
And these things are going, we are going to face these things a lot in our life.
अभी जो साल डेढ़ साल से हम जिस मुसीबत से, जिस वबा से पूरी इंसानियत जूझ रही है, इस वक्त फंसी हुई है, कितनों का ईमान इसमें हिल गया.
He says that the situation that we are going through for last year and a half, how many people are there whose iman is shaken?
और कितने हैं जिन्होंने उससे डर के अपने ईमान से, अपने आप को ईमान से बेताल्लुक कर लिया?
And there are so many of them that because of the fear they have moved themselves away from.
लोगों ने नमाज़ें छोड़ दी.
The people have left their salah.
मसाजिद बंद कर दिए.
They closed the masajid.
अपनी अपने आप को उन्होंने बिल्कुल ये बता दिया कि भाई हमको ऐसा नहीं करने का है, ये चीज में जाना ही नहीं है अगर ऐसी कोई बात है तो.
And they themselves moved away from these things so much.
ऐसों को तो दज्जाल एक मिनट में शिकार कर लेगा.
And people like this will be the target of दज्जाल and they will be deceived in a minute.
अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत
फरमाए,
क्योंकि हम भी दावा नहीं कर सकते अपने ईमान को बचा पाएंगे, बहुत अल्लाह से पनाह मांगने की जरूरत है.
So even we cannot claim that we'll be able to protect our iman. That's why we should be very fearful and ask Allah subhanahu wa ta'ala.
और इसीलिए मेहनत करना है ताकि हमारे ईमान में कुव्वत आए.
That's why we need to make effort so that we can strengthen our iman.
और कोई चीज हमारे ईमान को हिलाए नहीं.
And nothing can shake our iman.
ईमान की हकीकत क्या है? फाइल अल्लाह को देखना.
And the reality of iman is to see Allah as the doer of everything.
तो अल्लाह के गैर को फाइल देखने की तरफ हमारा ज़हन ना जाए, इसकी मश्क करनी है.
And we should stop thinking about something else other than Allah subhanahu wa ta'ala as the doer of things.
तो जो अल्लाह के गैर की तरफ चीजें मंसूब होती हैं, उसमें ईमान वाले की नजर और उसकी सोच और बेईमान की नजर और बेईमान की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है.
That's why those things where the benefit of prophet is related to about those things, the thinking about a person of iman and thinking of a person who does not have iman, there's a big difference.
जैसे मिसाल के तौर पर इसी बीमारी पेंडेमिक के किस्से को ले लीजिए आप, उससे हम समझ सकते हैं एक बात.
He said, just take the example of the pandemic and through this we can understand this.
जिनके पास ईमान नहीं है उनके कॉन्सेप्ट में यह होगा कि एक को बीमारी लगेगी तो उस एक से दूसरों को खुद ही फैलेगी.
And the people who do not have iman, their understanding is if one person is affected, then he is going to affect others as well.
Automatically.
And automatically.
ईमान वाला ये नहीं कहता.
And the person of iman doesn't say this.
ईमान तो इस तसव्वुर को देता ही नहीं.
And iman doesn't even give this perception.
क्योंकि इस तसव्वुर का मतलब बहुत खराब निकलता है अल्लाह के हक में.
This perception is very bad in relation to Allah Subhanahu wa Taala.
अल्लाह ताला तो एक को बीमार करना चाह रहे थे, हो गए सारे बीमार.
And the perception that comes out of this is Allah wanted to give the sickness to one, but everybody got affected.
बताओ ये बात अल्लाह के हक में सही होगी?
Will this be right in regards to Allah Subhanahu wa Taala?
तो भाई मतलब अब क्या है यहाँ पे? ईमान क्या है यहाँ पे?
Then what is iman in this case?
ईमान यहाँ पर ये होता है मेरे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जितनों को नुकसान होना तय है, जितनों को बीमारी होना तय है, उतने सारे बीमार होंगे और वो हर एक मुस्तकिल हुक्म से होगा. यानी कि एक हुक्म से एक हुआ तो दूसरे को हुक्म की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुस्तकिल इंडिपेंडेंट है, हर कोई इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म के मामले में. जिसको होना है उसको होगा और होकर रहेगा, और जितनों को उन्होंने होने का फैसला फरमा दिया उतनों को होगा, चाहे इंतजाम कुछ भी कर लो. और जिसको नहीं होने का हुक्म उन्होंने दिया होगा, नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो. और होगा हर एक को अलग अलग हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला के. ये ईमान वाले का नजर होगा, की नजर का की ज़हनियत होगी, और बेईमान की ज़हनियत ये होगी कि एक को हो गया उसके बाद में फिर वो सबको ऑटोमेटिक हो जाएगा.
It says, what is the belief of a person of iman that whoever is getting affected, they are getting affected because the will and command of Allah Subhanahu wa Taala. It's not that one person got affected and automatically they are affecting others, but all those people for whom Allah Subhanahu wa Taala has written that they are going to be affected by that, they will be affected by the individual command of Allah Subhanahu wa Taala, and they cannot be saved. It is not that one person got it and after that other got it without the will of Allah Subhanahu wa Taala, without the command of Allah Subhanahu wa Taala. But the believer thinks that anybody who got the harm, anybody who got infected, affected by this, these are the people who got affected because Allah wanted, and this is a separate command of Allah Subhanahu wa Taala for that person.
जब कोई बीमारी आती है तो उसकी हिफाजती तदाबीर भी होते हैं.
And when there is some disease, people will try to protect it from.
जब भूख लगती है तो उसके तदाबीर होते हैं.
When a person feels hungry, he makes arrangements for it.
सर्दी होती है तो उसकी तदाबीर होते हैं.
When there is cold, there people make arrangements for it.
घर ठंडे हो जाते हैं तो उसको गर्म करने की तदाबीर होती हैं.
When the homes become cold, there are the things to kind of heat it and warm them up.
तो ये तदाबीर अल्लाह ही के बताए हुए हैं.
And all these things, arrangements are shown by Allah Subhanahu wa Taala.
तो इन तदाबीर को बंदे को इख्तियार करने को मुमानात नहीं होगी.
And there is no harm in using these arrangements.
इसलिए अगर कहें कि भाई बचाव की तदबीर में तुम नाक पे कपड़ा लगा लो तो मना नहीं होगा.
That's why if somebody says that put a mask on to protect yourself, it will not be something that is disallowed.
तदबीर के अंदर थोड़ा सा अपना गैप कर लो तो कोई हरज नहीं होगा.
And in the salah you stand with.
In the salah नहीं, general.
In general, if you stand a little far, then it doesn't mean anything.
अगर सलात में भी कर ले तो गुंजाइश निकलेगी, जरूरत है. लेकिन ये कि in general एक बात है कि ये तदाबीर की लेन की चीज है, लेकिन इसके बावजूद ये यकीन करना होगा कि जिसको होना है अल्लाह का हुक्म होगा तो हो जाएगा.
These are all the arrangements or these are all the precautions like social distancing and others in general. But with this we need to believe that even with this precautions, if something has to happen with the command of Allah, it will happen.
और जब अल्लाह बचाना चाहेगा तो बच जाएगा, चाहे बंदा तदबीर करे या ना करे.
And if Allah wants to protect somebody, he will be protected whether he adopt any means or not.
क्योंकि तदबीर करने का हुक्म दो किस्म का होता है.
Because there are two different commands of doing the arrangements of tadbir or adopting the means.
एक तदबीरें वो होती हैं जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म पाबंदी के साथ फरमाया कि तुमको ये तदबीर करनी पड़ेगी.
And there's one type of arrangement or that a person where Allah Subhanahu wa Taala commands that you have to do it.
उनको असबाब यकीनी कहते हैं.
And these are called the certain asbab.
और कुछ जैसे भूख लगने की सूरत में खाना खाना.
Like when you feel hungry, you eat food.
तो अल्लाह तबारक व तआला बचाते हैं, खाना नहीं बचाता.
It's Allah Subhanahu wa Taala who saves, the food doesn't save.
मगर अल्लाह ने फरमाया कि नहीं खाना पड़ेगा.
But Allah Subhanahu wa Taala said that you have to eat.
बचाऊंगा मैं ही, लेकिन खाना पड़ेगा तुझे.
Allah Subhanahu wa Taala said that I will save you, but you have to eat.
अब अगर ऐसी सूरत में बंदा नहीं खाया और मर गया तो गुनहगार होता है.
And in this situation, if a person doesn't eat and he dies, then he will be a sinner.
और उसको खुदकशी का गुनाह होता है.
And he will have the sin of suicide.
और एक तदबीर वो होती है कि जिसका करना जरूरी नहीं होता.
And there is one type of means that it doesn't have to be mandatory for the person to adopt.
इजाजत होती है चाहे करो और अगर नहीं करोगे तो यकीन ही नहीं, हमारी तरफ से ये हुक्म नहीं है कि नहीं करोगे तो गुना होगा, ये नहीं होगा.
And it is optional. If you want to do it, you'll do it. If you don't do it, it's not that you'll be a sinner.
ये बीमारियों वगैरह से बचने की जो तदबीरें होती हैं, ये दूसरी किस्म है, पहली किस्म में नहीं होती है.
And all these precautions that a person take because of all these diseases, it's of the second type, it's not of the first type.
लेकिन इसमें ये ज़हन रखना पड़ता है बंदे को, हुआ असल में ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए मुनाफिकीन ने अपना रास्ता बचा लिया, कहने लगे हम जाएंगे तो मरेंगे, नहीं जाएंगे तो बच जाएंगे. तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ऐना मा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम्हें मौत आना है तो मौत आएगी चाहे महफूज किले में बंद हो जाओ.
At the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked the people to go out in path of Allah subhanahu wa ta'ala, the munafiqeen wanted to save and protect themselves by saying that if we go out, we will die. And they wanted to save themselves, and that's why they didn't go. And on this, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the close meaning of which, that whatever you do, even if you close yourself in the big fortress, Allah, if you have to die, Allah will give you death.
So, इसलिए जिसको नुकसान होना है वो अल्लाह के हुकुम से होगा.
That's why if anybody has to face loss, that is because of the command of Allah.
Tadbir kare tab bhi, tadbir na kare tab bhi.
Even if he adopts the means or arrangements, or even if he does not.
Aur jisko nuksan nahi hona hai, wo nahi hoga. Tadbir na kare tab bhi, tadbir kare tab bhi.
And the person who have to be saved from any of the loss, whether he will adopt the means or not, he will basically be saved.
Is tasavvur ke saath mein, is iman ke saath mein zinda rehne wale ke rehne ke andaaz mein, उसका अल्लाह ताला उसके एतमाद में, उसके कॉन्फिडेंस में, उसके यानी उसकी तसल्ली और इत्मीनान में जमीन आसमान का फर्क होगा उसके मुकाबले में जिसके पास ये ईमान नहीं होगा.
The person who has this belief in the confidence and the peace of mind that this person has, there will be a huge difference between that and compared to that person who does not have this belief.
और ये इसको कहते हैं सवाब आजिल, इसको कहते हैं नकद सवाब जो बंदे को मिलता है इस दुनिया में किसी अच्छे अमल का.
This is the cash profit that the person gets of any good deed that he does in this.
Kyunki iska asal sawab to aakhirat mein milega, Allah Pak par bharosa karne ka jo sawab milega tawakkul ka wo alag milega.
The actual benefit of this the person will derive in the hereafter of having the reliance in Allah subhanahu wa ta'ala.
Isliye mere dosto la ilaha illallah ke mazmoon ko sunana aur sunna aur kasrat se is mazmoon ka iada karte rehna gharon ke andar bhi khuruj ke andar bhi apne paas rehkar bhi is zamane mein bahut zyada zaruri hai.
He says that's why talking and hearing about La ilaha illallah, this topic of La ilaha illallah, whether we are out in path of Allah subhanahu wa ta'ala, in our homes, especially in these circumstances, it is very, very important.
Chahe hum hafiz hon, chahe alim hon, chahe mashayikhin mein se hon, chahe arab hon, chahe ajam hon, chahe deendar hon, chahe ghair deendar hon, taazegi ki aadmi ko zarurat padti hai.
So irrespective if a person is a hafiz or a alim, an arab or non-arab, whoever that person might be, he will always need the, or he will always have the requirement of refreshing it.
Huzur ne farmaya ke jaise kapda maila hota hai, aise dil bhi maila hota hai.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that as the clothes get spoiled, similarly the heart also gets spoiled.
Aap isko dusre maana mein ye bhi keh sakte hain ki iman bhi maila hota hai.
You can also say that the iman will also get spoiled.
Usme kamzori aa jati hai.
There is weakness that develops in it.
Uske andar purana pan aa jata hai.
There is oldness that comes into it.
Usko naya karne ki zarurat padti hai.
And we need to refresh it.
Jadidu imanakum, apne iman ko naya karo.
They said you keep refreshing your iman.
इसकी जरूरत सबको पड़ती है.
And there is need of this for everybody.
बड़ी उम्र वालों को भी, छोटी उम्र वालों को भी.
The people with older age and younger age.
मर्दों को भी और औरतों को भी.
Men and women.
इसीलिए मेहनत की जरूरत मर्दों में भी है और औरतों में भी.
That's why there is a need of effort both in men as well as women.
बच्चों में भी, बड़ों में भी.
Both in the youngsters and.
इसीलिए अपने लड़के लड़कियों को खास तौर पर जो स्कूल जाने वाले हैं वो उनको बड़ी जरूरत पड़ती है.
That's why especially those boys and girls who go to the school, there is a bigger need for them.
और खास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज वगैरह जा रहे हैं उनको और ज्यादा जरूरत है.
Especially those who are going to the universities, they need it much more.
खुसूसन जिन लोगों के टॉपिक के अंदर फलसफा है उन लोगों के लिए तो और ज्यादा जरूरत है.
Especially those people who are studying philosophy, they need much more than.
क्योंकि उसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की जात में शक पैदा करने की मेहनत होती है.
Because through philosophy, they have this effort that they create doubt in Allah subhanahu wa ta'ala.
तो इसलिए अल्लाह की जात आली का जितना यकीन बनेगा उतना फितने से बचेगा आदमी.
That's why the stronger the belief in the zat of Allah subhanahu wa ta'ala, that's how much the person will be protected from fitna.
Aur ye jitna kamzor hoga utna fitnon se mutasir ho jayega.
The weaker this become, then it will be easy for the person to get affected by fitna.
Aur utna zyada mahol ka bhi asar le lega banda.
And the person will also take the effect of the environment.
Mahol ek aisi cheez hai mere dosto, isse sab mutasir hote hain.
The environment is such that everybody gets affected by it.
Anbiya alaihi wasalam sirf mahol se mutasir nahi hote, ye unki khususiyat.
Only the prophets were saved from the effects of the environment, and this for the spirit. speciality of Anbiya.
Allah ne unme sirf muasiriyat rakhi hai, mutaasiriyat nahi rakhi.
Allah Subhanahu wa Taala has only kept the sifat of affecting others, they don't get affected by others.
Lekin hum jitne bhi hote hain, chahe nek ho chahe bad ho, zyada waqifkar ho ya kam waqifkar ho, mutaasir hone ki salahiyat hai hamare andar.
And in us general human beings, whether they are pious or not, whether these are people who know or don't know, there is this quality of being affected by others.
Agar humko ghafilon ka mahol milega, ghaflat hamare mein bad jayegi.
And if we have the environment of those people who are ghafil, then that's how we will be affected.
Aur agar zakirin ka mahol milega, Allah ko yaad karne walon ka mahol milega, to hamare andar bhi taazgi aa jayegi.
And if we get the environment of people who do the zikr of Allah and remember Allah subhanahu wa ta'ala, then we will also see the fruit.
Jahan aakhirat ke tazkire honge to aakhirat hamare andar zinda hogi.
And wherever there is talk about akhirat, the akhirat will come alive in us.
Aur agar akhirat ke tazkire nahi hue, khali duniya ke tazkire hote rahenge, to duniya hi hamare andar bhi zinda ho jayegi.
And if there is no discussion of akhirat, there is only the discussion of duniya, then duniya will come alive in us.
Aur jis aadmi ke andar duniya zinda ho jaye, uske paas deen nahi bachta.
And the person who has duniya alive in him, he cannot protect his deen.
Huzur ne farmaya, hubbud duniya ra'su kulli khatiya. ये सारी बुराइयों की जो जड़ है वो दुनिया की मोहब्बत
है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से द क्लोज मीनिंग ऑफ इट दैट द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल इज द लव ऑफ दुनिया.
हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि उनसे जो है हज़रत इब्राहिम इब्ने अधम की मुलाकात हो गई.
इट्स फेमस अबाउट द यूसुफ
इमाम अबू यूसुफ
रहमतुल्लाह अलैह दैट ही मेट इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह
अलैह. उन्होंने उनको इस तरगीब देना चाहिए दीन के इल्म की और फरमाया कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना चाह रहा, ताल्लुक बनाना चाह रहा, उसको इल्म सीखना जरूरी है.
एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग तरगीब टू इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह दैट हूएवर वांट्स टू मेक एफर्ट इन द पाथ ऑफ अल्लाह ही शुड लर्न इल्म.
उन्होंने फरमाया कि हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, मैंने एक हदीस सुनी है, मैं जरा उस पर काम कर रहा हूँ, जब उससे फारिग हो लूंगा तो फिर जरा आगे बढ़ने का इरादा है.
He said that yes, I have heard a hadith. I'm making effort on it to bring it in my life. Once I'm done with it, then I'll move forward.
Farma, wo hadith maine suni hai. Huzur ne farma, hubbud dunya rasu kulli khatiya. Us pe work kar raha hu. Zara ye nikal jaye dil mein se, fir uske baad ka ilm seekhne mein lag jaunga.
He said that I have heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the close meaning of it that the root cause of all the evil is love of dunya, and I'm making effort on it. Once the love of dunya comes out of my heart, after that I'll work on other things.
ये तो नहीं है कि इमाम अबू यूसुफ ने उसके जवाब में क्या कहा, मगर बजाहिर ये समझ में आता है कि उन्होंने दिल में ये तो यही कहा होगा कि इसको जरूरत नहीं है, इसको जो मालूम होना है वो मालूम हो गया.
He said that though we don't know what Imam Abu Yusuf Rahmatullah Alayhi had told him, but what we can interpret from this that he might have said it to himself that this person know what he needs to know.
क्योंकि अब इस वक्त जिस माहौल में मैं और आप रहते हैं, ये दुनिया की मोहब्बत का माहौल है.
And the environment in which we are all living is the environment of love of this dunya.
Maal se kamon ke banne ka mahol hai.
And people believe that their things are done through the wealth.
Ohdon se kaam ke banne ka mahol hai.
And they feel that their things are done through the positions.
Maal ki kasrat se insaan ki izzat ka mahol hai.
They feel like they get honored through the wealth.
Aur isko hum bhul gaye ki is ilm mein aur Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ke ilm mein to takrao hai.
And we have forgotten that in this knowledge, the knowledge of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, there is a conflict.
कैसे कामयाबी मिल सकती है?
Then how are we going to be successful?
हुजूर ने दुनिया को जलील बताया.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड दिस दुनिया इज जलील.
तो हमारे पास वो अजीज हो गई.
And it has become अजीज for us.
हुजूर ने फरमाया कि माल के पीछे वो पड़ता है जिसके पास अकल नहीं होती.
And Rasul sallallahu alaihi wasallam said the person who goes after the wealth is the one who does not have his wisdom.
लहा यजमाउ मन ला अकल लहू, यही तो हुजूर ने फरमाया ना. और हमारे ज़हन में ये है कि सबसे अकलमंदी ये है कि आदमी एक घंटे में कितने पैसे बना रहा है.
In our understanding it is that the one who's more wise is the one who makes money and how much quickly he makes the money.
To isliye jab ilm-e-nafsi apna yani jo hamare mushahide ka tajrube ka jo ilm hai wo hamare mein bharta jayega to ilm-e-nabawi jo hai wo nikalta chala jayega.
It says that that's why if we start bringing in the knowledge of our experience and research of this dunya into us and we keep filling ourselves, then the knowledge of the nabuwat or prophethood will keep coming out of us.
To hame apne ilm ki nafi karke nabawi ilm ko lena hai.
That's why we need to discredit the knowledge that we have and take in the knowledge of Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Isiliye la ilaha illallah ke sath Muhammadur Rasulullah.
That's why with la ilaha illallah there is Muhammadur Rasulullah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne jo ilm diya wo hame lena hai.
The knowledge that has been given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that's why we need to take it.
To us ilm ka yaqeen dil ke andar jitna bithayenge utna zyada ye kalma banega.
That's why if we get the more yaqeen of this knowledge, that's how much we will be strengthened this kalima.
Us ilm ka yaqeen jitna kamzor ho jayega ye kalma utna bigdega.
And there is weakness in this ilm, that's how weakness will get in the
kalma. Aaj hamara kalma bana hua hai ya bigda hua hai pehchanne ki moti alamat hai.
And if you want to see if we have made effort on kalima or not, there is a big sign of this.
Nabi Pak Sallam ka jo ilm hai, wo hamare ilm se takrata hai ki nahi takrata.
That's if there is a conflict between the ilm of Rasulullah Sallam and ilm that we have, that is a big sign.
अगर आप देख लेंगे दोनों में बहुत बड़ा फर्क है तो समझ जाना कि हमारा ईमान गड़बड़ है.
And if you see a big difference in between these two, then there is something wrong with our
iman. क्योंकि तो कलमे का तो जूस है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.
Because Muhammadur Rasulullah is part of the kalma.
अगर उसके ऊपर हमारा कामिल एतमाद नहीं है तो वो तो बिगड़ा हुआ हो गया ना, डिस्टर्ब है ना फिर वो.
And if you don't have belief on it, then there is some disturbance there.
इसलिए तालीम की हलकों में बैठना जरूरी है.
That's why it is important to sit in the halqa.
और इसी वजह से तालीम के हलकों से मकसूद ये नहीं बताया जाता कि हमारे नॉलेज में आ जाए बात.
That's why through the help of the talim, this is not desired that it comes in our knowledge.
अरे भाई ये तो हम सुने हुए हैं.
Oh, we have already heard.
अरे तुम कब तक पढ़ते रहोगे?
How long are you going to read this?
भाई उसका तासुर कितना आया?
How much effort have we taken?
इब्राहिम ने आदम को देखो ना, कह रहे हैं कि एक हदीस का मतलब तो लें दो पहले मुझे मेरे दिल को अंदर.
Just look at the example of Ibrahim bin Adam rahmatullah alayhi. He's saying, let me take the effect of the hadith into me first.
तो तासुर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का असर दिल में आके जो दूसरा असर है वो निकल जाए.
That's why the effect of the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam come into our heart so that the other effects get out of it.
नमाज के बारे में जो आपने फरमाया वो असर दिल में आ जाए.
That's why whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said about salah, that starts affecting our heart.
अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मंडल के मुनकर के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो असर दिल में आ जाए.
Enjoying the good and forbidding the evil, the effect of that needs to come into our heart.
इस दुनिया की मोहब्बत के बारे में जो आपने फरमाया वो असर दिल में आ जाए.
What Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said about the love of this dunya, the effect of coming into our heart.
इस माल के बारे में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो असर दिल में आ जाए.
The word Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said about this maal, the effect of that coming into our heart.
इस दुनिया की जाह और वहदे और दुनियादारियां जो होती हैं हुकूमतें उसके बारे में जो सरकारे दो आलम सासम फरमाया कि वो असर दिल में आ जाए मेरे.
थिंग्स रसूलुल्लाह सासम ने टॉक्ड अबाउट द पोजीशंस एंड थिंग्स ऑफ दिस दुनिया हाउ द इफेक्ट ऑफ दैट कम टू माय हार्ट.
हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी आदमी के किसी बकरियों के रेवड़ में भूखे दो भेड़िए छोड़ दिए जाएं वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते. भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में जिसका चरवाहा मौजूद न हो छोड़ दिए जाएं वो जैसा उनको एक से चार छह दस बीस को जख्मी करके मार डालेंगे वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आदमी को उसकी बड़ाई की मोहब्बत इज्जत की मोहब्बत जो उसके दिल में है और दुनिया की मोहब्बत जो उसके दिल में है वो जितना नुकसान पहुंचाती है वो दोनों उतना नुकसान नहीं पहुंचाते.
That if you leave two wolves in a herd of sheep, they will not cause that much damage. That the desire for honor and desire for this dunya and wealth cause the damage for human beings.
और अब आपने क्या बोलते हैं? हाँ जो आप बोल चुके हैं honor का, हुब्बेजाह जिसको कहते हैं इस्लाम की ज़ुबान में उसको हुब्बेजाह कहते हैं. गुनाह है कबीरा है.
And this desire for this honor is called hubbejah in the language of Islam, and this is major sin.
Hubbejal bhi kabira guna hai, hubbemal bhi kabira guna hai.
And similarly, desire for wealth is also the major sin.
Hum sirf samajhte hain ki sharab peena hi kabira guna hai.
And we only think that consuming liquor is the major sin.
Adultery hi kabira guna hai.
And we only think that adultery is the major sin.
Aur sood khana hi kabira guna hai.
Only eating interest is major sin.
Aur mujhe apni jaan ki jaah ki kitni mohabbat mere dil mein hai uski fikr hi nahi.
And how much I have the desire for this honor, I don't worry about it.
Maal ki kitni mohabbat hai uski fikr.
And how much love I have for the wealth, I don't worry about it.
मैं माल हलाल रोटी कमाने के लिए लगा हुआ हूँ या माल जमा करने का भी एक चक्कर मेरे दिमाग में है.
That's why I say I'm just making effort to earn the halal rest, or I'm also making effort to accumulate the dunya.
तो कितना जमीन आसमान का फर्क है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इल्म में और हमारे अंदर पाए जाने वाले एहसासात और जज्बात में.
How big a difference it is between the knowledge that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given and the desires and wishes that we have in us.
तो क्या फिर भी डाउट रह जाएगा कि हमारा कलमा बना हुआ है या नहीं बना हुआ है?
Even after this, do we have a doubt to see whether we have built our iman or not?
कि हमारा कलमा कितना बना हुआ है.
And how much kalma has we made effort on?
मैं इतना पुराना हूँ, मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मैं इतना बड़ा शेख हूँ, मैं इतना बड़ा हाफिज हूँ, मैं इतना बड़ा दीनदार हूँ, मेरा कलमा अगर नहीं बना हुआ होगा तो फिर किसका बना हुआ होगा? भाई खुद देख लो गरीबान में मुंह डाल के कि कितना कलमा बना हुआ है, कितना कलमा बिगड़ा हुआ है.
That's why the person can claim that I'm an old worker, I spend so much time, a big hafiz, an alim, a shaykh. He says that all this can be claimed, but a person can look into himself and see how much effort he has made and how much his iman is built.
इसलिए ये एक लाजमी चीज है कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावत के रास्ते में निकलकर इस कलमे के ऊपर मेहनत करें हम ताकि हमारे अंदर का यकीन ऐसे बन जाए कि मखलूक का तासुर खत्म हो जाए.
That's why this is absolutely mandatory for us that by going out in path of Allah subhanahu wa ta'ala we make such an effort that the effect of the creation gets out of our hearts.
और इबादत और इस्तेआनत सिर्फ अल्लाह के लिए रह जाए.
And that's why the ibadah and asking from seeking help is only from Allah Subhanahu wa ta'ala.
और इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ने में हम सच्चे हो जाएं.
And then we become true in asking that, oh Allah, we only believe in you and only, you know, seek from help from you and worship you and seek from help from you. We be truthful to this.
एक बात याद आ गई.
And I remember one.
वो ये है कि इय्याक अबुदु नहीं है, इय्याक नअबुदु है.
It's not इय्याक अबुदु, it's इय्याक नअबुदु.
अबुदु का मतलब मैं इबादत करता हूँ, नअबुदु का मतलब हम करते हैं. अस्तईनु का मतलब मैं मदद चाहता हूँ, नस्तईनु का मतलब हम चाहते हैं. तो हम अबुदु में नहीं है तो नअबुदु में कब जाएंगे अभी?
He says that this is not that I do it, it's said we. He said the problem is even if I am not in it, then when will we go into it?
इसका मतलब इज्तिमाईयत का तकाजा है. अल्लाह पाक इज्तिमाईयत को चाह रहे हैं, मुसलमानों के मजमुए को चाह रहे हैं.
It's basically Allah Subhanahu wa Ta'ala asking,
इंसानों के मजमुए को चाह रहे हैं.
It's Allah Subhanahu wa Ta'ala asking this from the crowd of the human being, that's the whole community as Muslims.
और ये आपको पता ही है कि अगर इंसानों का मजमुआ यह काम करने लगे तो पूरी कायनात का मजमुआ कंसीडर होता है कि वो यही कर रहा है.
That says when the human beings, a group of human beings make this effort, then the whole universe will be considered as making effort.
इसलिए कि इंसान के अंदर पूरी कायनात का खुलासा है.
That's why there is the summary of the whole universe in the human being.
जो इंसान करेगा पूरी कायनात पर उसका असर पड़ता है.
Whatever the human being does, the effect of it will be on the whole universe.
इसलिए अच्छे अमाल का असर पूरी कायनात पर पड़ता है, बुरे अमाल का असर पूरी कायनात.
That's why the effect of good deeds will be on the universe, and the effect of the bad deeds will also be on the whole of the universe.
इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. بر و بحر میں جتنا فساد ہے وہ بندوں انسان بنی اعمال بنی آدم کے اعمال کی وجہ سے.
That's why Allah Subhanahu wa Ta'ala sent the Quran, the close meaning of which that all the fitna and all the troubles that you see either on the dry land or on the seas is because of the amal of the human beings.
और अल्लाह ने फरमाया कि ये भी बुरा असर जो पूरी कायनात में है ये थोड़ा सा चखने के लिए है. लियुदीकहुम बादल्लज़ी अमिलू, जो उन्होंने किया है उसका कुछ चखने के लिए है और इसलिए है ताकि तौबा की उनको तौफीक हो जाए.
Is it this effect is just a small piece of it and this is here because they can get the tawfiq of doing tawbah.
इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों ईमान की मेहनत की बहुत सख्त जरूरत है.
That's why my respected brothers and elders, it's very important that we make effort of
iman. और हर हालत में जरूरत है.
And we have to do it in every
हर कंडीशन में जरूरत है.
In every condition we have
ये
to
बड़ी खुशी की बात है कि इस पेंडेमिक के हालात में भी माशाल्लाह आपके यहाँ से कई जमातें अल्लाह के रास्ते में गई.
And this is a very happy news that even during the pandemic many jamaats have gone out from here in the path of Allah.
और ये बहुत खुशाइन बात है माशाल्लाह.
And this is a very good thing माशाल्लाह.
और अल्हम्दुलिल्लाह ताला शिकागो में भी इन्हीं हालात में पेंडेमिक में 40 जमातें 40 दिन के अल्हम्दुलिल्लाह काम करके आई.
इवन शिकागो अल्हम्दुलिल्लाह इन दीस कंडीशंस 40 जमातें हैव गॉन फॉर 40 डेज एंड हैव वर्कड अराउंड.
और 40 दिन की दो मस्तूरा जमातें भी जाकर आई.
एंड टू जमातस विद लेडीज हैव गॉन फॉर 40
और 10 दिन की तो कई गई हैं.
एंड द जमात लेडीज जमात फॉर 10 डेज मेनी ऑफ देम हैव गॉन.
अभी 2-3 हफ्ते पहले हुआ ये कि जितने लोग 40 दिन के वास्ते जमात में जाकर आए उनका तासुर बड़ा अजीब है. उन सबको जमा किया गया था हमारे पास, फिर 4 महीने की तश्कील उनकी की गई है तो 95% से ज्यादा लोग 4 महीने के लिए भी राजी हो गए.
He said the effect of spending the time in path of Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 days in this condition is so ajeeb that those people a few weeks back, the people in Chicago who had spent 40 days, they were gathered and the tashkil was made for 4 months. And about 95% of those brothers who had spent 40 days, they were ready for spending 4 months.
इसलिए हमारे उलमा ये फरमाते हैं, दावत के उलमा, कि तुम अगर दीन की मेहनत को नामुआफिक हालात में करोगे उससे जो तुम्हारा मिजाज बनेगा, ईमान के अंदर जो कैफियत आएगी, जो नूरानियत आएगी, वो यानी रेगुलर हालात के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी.
That's why the ulama says that when you do the effort of dawat in difficult conditions, the effect of that you will feel will be far greater than the effect that you would see in making the effort in normal conditions.
हम हर वक्त जिस हालत से हम गुजर रहे हो रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका में रहने वाला आदमी, यहाँ जॉब करने वाला आदमी, चाहे भला वो घर से ही जॉब कर रहा हो आजकल भी, फिर भी जो है ना ये जॉब करने वाला अपने आप को हमेशा डिफिकल्ट हालात में महसूस करता है.
That's why the situation that we are going through here, the people who are doing the job, even though they might be working from home, all the time they feel that they are in a very difficult situation.
अच्छा, और घर के अपने हालात के इत्तेबार से भी.
And even situation of their family and home.
वहाँ अपने मुल्कों में जो है ना छोटे बच्चे कैसे बड़े होते हैं, बाहर खेल लेते रहते हैं, घर के बाहर भी भाग रहे हैं, अंदर भी भाग रहे हैं, उनको लड़ाने के भी मौके हैं, उनकी एनर्जी निकलने के भी बहुत से चांसेस वहाँ पे हैं. यहाँ पे उनकी एनर्जी घर में, वो खुद भी घर में, कोई दोस्त अहबाब भी नहीं, हम ही उनके दोस्त भी हैं, हम ही उनके माँ बाप भी हैं, हम बाज वक्त हम ही माँ हैं, हम ही बाप हैं, कभी बाजू का हमारी माँ जो है ना बाप बन जाती है, मतलब यहाँ की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी अजीब व गरीब है कि वो बच्चों के बेशुमार मसाइल भी हमें हैंडल करने होते हैं.
He said that if you go back and see in the other countries we come from, they have, the kids have this opportunity, they can run around the streets and they can take out their energy out there and they don't have to be sitting in the home and sitting with us. But the situations here are very difficult, very different, that we become the mother and we become the father. Sometimes mother become the father and kids are stuck in the home with us. So all these difficult situations that we see here.
ये हम दूसरों को नहीं बता सकते.
And we cannot tell this to others.
हाँ, दूसरे समझ रहे हैं कि हम मजे में रहते हैं.
And others think that we are very peaceful and spending good life.
हाँ, तो वो हमें बोलते हैं कि ये लोग तो मजे में रहते हैं, ये लोग क्यों जमातों में नहीं फिरते, हम तो मुसीबत में हैं.
He said these people are in a comfort and why are they not going out in path of Allah subhanahu wa ta'ala? We are the ones who are in difficulty.
हाँ, उनको क्या पता है कि हम किस तरह के हालात में हैं?
And what do they know about our situation?
हाँ, जितना ज्यादा, जहाँ जितनी ज्यादा दुनिया होगी वहाँ उतनी ज्यादा उलझन होगी.
He says that wherever the amount of the dunya that you have, that proportionately you will have difficulties.
हाँ, हमारे यहाँ मसल मशहूर है कि जितना हिलेगा जाल के अंदर, जाल घुसेगी खाल के अंदर. वो जो परिंदों का शिकार करते हैं ना, वो परिंदे जब शिकार करते हैं, परिंदा आता है, मछली आती है, तो जब वो जाल के अंदर मछली आ जाती है, परिंदा आ जाता है, तो जितना वो फड़फड़ाता है उतना उसको पकड़ते रहता है वो जाल. तो उसको कहते हैं जितना हिलेगा जाल के अंदर, जाल घुसेगी खाल के अंदर. दुनिया की यही हालत है, जहाँ जितनी ज्यादा दुनिया होगी वहाँ उतनी ज्यादा उलझन होगी.
He says that there is a saying which is very famous, that a person who is stuck in the net, the more he moves, the more stuck he gets into the net. He says that's why the person who has more wealth and who has more dunya, that's more difficulties that they will face.
Because ye dunya, dunya se bhari hui hai, ye mulk dunya se bhara hua hai, isliye ye masail se bhara hua hai.
That's why this country is filled with dunya, that's why it's filled with difficulties.
इसलिए स्ट्रेस से भरा हुआ है.
That's why it's filled with stress.
इसलिए टेंशन से भरा हुआ
है. Filled with tension.
फिक्रों से भरा हुआ है.
Filled with concerns.
दुनिया का मजा नहीं है यहाँ.
And there is no
जिंदगी का मजा नहीं.
There is no pleasure of dunya.
और किस किस एतबार से आदमी मोहताज होता है आप अंदाजा नहीं कर सकते.
You cannot see that how much the person is disappointed and stuck in this dunya.
जबकि दुनिया की खुसूसियत ही परेशानी की है.
The quality of dunya itself is difficult.
Hakim ho, mahkum ho, ameer ho, gareeb ho, nawab ho, faqeer ho, yahan pe sab gham mein musibat mein mubtala hote hain.
So the person,
dunya ke andar, to ye to America hai.
He says the person who is a ruler or a person who is a servant, the person who has wealthy, whoever that might be, they get difficulties and they get caught in calamities in the dunya, and this is America.
Isliye to isti'anat Allah se hai.
That's why asking is from Allah.
Agar ye duniya mazey ki hoti, hamesha aaramdeh hoti, to isti'anat ke liye shakne kyun banti?
He said that if this dunya is a place of comfort, then why Allah subhanahu wa ta'ala would have created the things of asking from it?
तो इसलिए इबादत के साथ में इस्तियानत का जोड़ बता रहा है कि यहाँ इस्तियानत की जरूरत है.
That's why the relationship between ibadat and asking from Allah subhanahu wa ta'ala shows that there is a need for asking.
इसलिए मेरे दोस्तों, यहाँ जिस जितने सख्त हालात हैं, उन सख्त हालात में ही हमें इनका मुकाबला करते हुए, अपने आप को फितनों से बचाते हुए, बचाने के लिए, अपनी औलाद को फितनों से बचाने के लिए, अपने घर बार को फितनों से बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने, अपने घर वालों का ईमान बचाने, अपने आने वाली नस्लों का ईमान बचाने के लिए मुस्तकिल कंटिन्यू मेहनत करने की जरूरत है.
That's why in these situations, whatever we are stuck in, it is very important that to save our iman, to save the iman of our kids, to save the iman of our families and generations, it is very important that we keep making effort.
और ऐसी मेहनत की जरूरत है जिसमें ईमान में ताजगी आए.
And we need to make such an effort that which refreshes our iman.
और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ईमान में ताजगी, मेहनतें बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हक मेहनतें हैं, लेकिन ईमान को ताजा करने की, आखिरत को याद दिलाने की, फिक्र पैदा करने वाली जो मेहनत है, वो हमारे और आपके दरमियान में जानी पहचानी है कि वो कौन सी मेहनत है.
And we don't need to talk about, we don't need to identify. There are many efforts which are good efforts and haq efforts, but that effort that refreshes iman, that effort that increases iman, we know what that effort is.
Kyunki asal humko uski zarurat hai, wo hamari dawa hai is waqt.
That's why we definitely need that, because that is our medicine at this time.
To is wajah se jitne saathi tashreef farma hain, in sab ko mere dosto aur jitne bhi sun rahe hain, un sab ko Allah ke raaste mein deen ki mehnat, deen ka kaam karne ka irada karna hai.
That's why all those brothers who are here and who are listening, it is very important for them to make intention, to make effort in path.
और पूरी इंसानियत इसकी जरूरतमंद है इस वक्त.
And all the human being is in need of this.
मेरा भी अपना काम है और इंसानों का भी काम है.
This is my work and the work of all the mankind.
और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि तुम्हें अपना भी करना है और पूरे उम्मत का भी करना है.
That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that you have to do it and you have to worry about the whole mankind.
इसीलिए फरमाया قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
That's why Rasulullah said the close meaning of it, this is my path, I call people towards Allah subhanahu wa ta'ala my work and the people of who follow me.
तो इसलिए हमारी दोहरी जिम्मेदारी है कि अपनी भी निगरानी करो, अपनी भी फिक्र में लगे रहो हमेशा, और पूरी उम्मत की फिक्र में, खाली खानदान की भी नहीं, खाली खानदान की फिक्र करना भी मुसलमान की खसूसियत नहीं है, खाली खानदान की फिक्र करना तीतर बटेर की खसूसियत है. बोलो तीतर बटेर बोलो, समझ में आता है, कबूतर तीतर बटेर बोलो.
He said that's why we have two responsibilities. We have to take care of ourselves and we have to take care of the whole ummah, not just the family. That even just taking care of the family, this is not the responsibility of ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. These are the responsibility like birds, teeter and butter.
क्योंकि जाहिर है कि उसके दो अंडे होते हैं, उसके दो बच्चे होते हैं, वो दोनों माँ बाप जो है ना बच्चों को लाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हिफाजत फराहम करते हैं सर्दी से गर्मी से, जैसे उनको पर आ गए, यानी उनके हिसाब से 18 साल के हो गए.
He says that like you will see, they have two birds and they have two eggs, and once those eggs hatches, these chicks which come out and they are ready to fly, they leave. It says that it is very similar to what you can apply to ourselves, that like they become 18 years old and then they leave.
हमें जो जिम्मेदारी दी गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, खातिमुन नबियीन होने के सदके में और तुफैल में, वो यह है कि पूरी इंसानियत में मेहनत करना.
That's why the responsibility that has been given to us with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam being the last prophet is that we make effort in the whole mankind.
इसलिए दावत इल्लाह की बड़ी फजीलत बयान फरमाई गई.
That's why there's a lot of virtues which have been talked about दावत इल्लाह.
इसके लिए सफर करने की फजीलत बयान फरमाई गई.
The virtues of traveling for this.
हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अब हिजरत फतेह मक्का हो जाने के बाद में हिजरत तो नहीं रही, लेकिन तुमसे सफर का मुतालबा हो सकता है. जब तुमसे सफर का मुतालबा हो तो सफर करना.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the close meaning of it that after Fateh Makkah, there is hijrat is not mandatory, but you will be asked to travel, and whenever you are asked to travel, do travel.
और कुरान पाक में जगह-जगह नफर फी सबीलिल्लाह की फजीलत मुस्तकिल भी बयान की गई.
In the Quran, the different places.
यानी है तो वो अल्लाह के रास्ते में मौत उसके इस्तेलाह के मुताबिक, लेकिन लफ्ज नफर का इस्तेमाल किया गया ताकि वो आम रहे.
He said that there's different places in the Quran that talk about going out in path of Allah subhanahu wa ta'ala, and it's been mentioned multiple times because it's a common thing.
इसलिए नफर फी सबीलिल्लाह कहते हैं, खुरूज फी सबीलिल्लाह कहते हैं, इसकी आदत होना जरूरी है मुसलमान.
That's why going out in path of Allah subhanahu wa ta'ala, we need to get habituated to this.
और जाहिर है कि ये मुजाहिदा चाहता है.
And this requires sacrifice.
और जितना मुजाहिदा हम करने के आदि होंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला दीन पर चलने और कायम रहने के रास्ते खोलते रहेंगे.
And the more we get used to giving the sacrifice, the more Allah subhanahu wa ta'ala open the ways to be steadfast on deen.
हम चाह रहे हैं कि मुजाहिदा ना हो, अगर कोई ऐसा काम है तो बता दो, हम कर लेंगे.
And we are saying that tell us something that does not require sacrifice.
Aur mere dosto deen ki tartib mujahide par hai.
And the whole tartib of deen is on sacrifice.
Mujahida juhd mein hai aur mujahida kulfat mein hai. Hum mukallaf isi liye, mukallaf mein takleef hai.
He says that we are given the way out, or we are not made
easy way. Rasta aasan rasta nahi hai, balki takleef wala rasta hi ka naam deen hai.
He says that it's not the easy way, but it's a tough way where you have to give sacrifice, and this is what deen is.
Magar iska ye matlab nahi hota ki deen aasan nahi hai.
It doesn't mean that deen is not easy.
Huzur ne farmaya ki deen aasan hai.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deen is easy.
Matlab ye hai ki ye deen aisa hai ki uske liye agar tum takleef bardasht kar takleef uthana chaho to utha sakte ho, aisa nahi hoga ki takleef hi nahi utha sakte tum.
He said that if you want to bear that sacrifice, you can bear that sacrifice. It doesn't mean that it is something which is unbearable.
कोई भी काम आप करने जाएंगे तो उसमें तकलीफ तो है ही.
And anything that you want to do, there is some difficulty.
रोजा रखेंगे तो तकलीफ है सुबह से शाम तक की.
When you fast, there is difficulty from morning.
पांच वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो तकलीफ है.
When you pray five times salah, there is difficulty.
वैसे ही नमाज पढ़ने में भी तकलीफ है.
And just praying salah itself, there is difficulty.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. अल्लाह ने फरमाया कि जो खुशू इख्तियार करने वाले हैं उन पर नमाज आसान है, वरना तो नमाज कोई आसान चीज नहीं है, बहुत भारी चीज है.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, those people who have khushu in salah, it is easy for them. Otherwise, it is a very difficult thing.
हाँ, जो लोग हफ्ते में नमाज नहीं पढ़ते, साल भर में नमाज नहीं पढ़ते, उनसे पूछो नमाज कितनी मुसीबत है.
And those people who do not pray salah in three weeks and years, ask them how difficult salah is for them.
तो हज में तकलीफ है.
And there is difficulty in hajj.
तो दीन के अंदर दीन आसान है का मतलब ये नहीं होता कि उसमें मुजाहिदा नहीं है.
Deen is easy doesn't mean that there is no sacrifice in it.
तो मुजाहिदा जरूरी है मेरे दोस्त.
That's why sacrifice is necessary.
तो इसलिए जितना ज्यादा मुजाहिदे की शक्लें होती जाएंगी, उतना ज्यादा अल्लाह ताला के यहाँ ये बंदा मुअज्जज़ हो जाएगा.
The more the person gives the sacrifice, the more beloved he becomes in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala.
अगर एक आदमी को जंगल में चलना पड़ा, पैदल चलना पड़ा, धूल उड़ गई, इसका भी फायदा है.
And if a person is walking in the jungle and there is dust that is on him, there is benefit of this as well.
सफर में जाना पड़ा, पैसा खर्च हुआ, उस पर भी सवाब है.
If a person has to travel and he has to spend money, there is reward for that.
सफर में गया, वहां जाने के बाद उसको बुखार आ गया, सर का दर्द हो गया, उस पर भी सवाब है.
If a person is traveling and he has fever and headache, there is reward for that as well.
उसको अपनी गाड़ी पर गया, घोड़े पर गया, उसके ऊपर जो कुछ खर्चा आया, उस पर भी सवाब है.
If whatever he has spent on his conveyance, the vehicle, there is reward for that as well.
इतना महबूब अमल है अल्लाह का, इतना मोहतरम, अल्लाह पाक के पास इतना पसंदीदा काम है ये कि इस काम में जो भी चीज लिंक के तौर पर लग जाएगी, अल्लाह पाक उस पर सवाब अता फरमाए.
He says that this is so beloved work in the eyes of Allah Subhanahu wa Taala that whatever gets linked with this effort, Allah Subhanahu wa Taala will give reward for that.
सोचने की बात यह है कि अल्लाह के पास ये काम इतना महबूब क्यों है.
Now you have to think that why it is so beloved in the eyes of Allah.
क्योंकि उनके पास महबूब होने की कुछ खास बातें होती हैं.
Because there are certain things that make something special in the eyes of Allah.
महबूब होना इसलिए है कि वो अल्लाह ही की रहमत को खींचता है मखलूक के लिए.
Because it is beloved in the eyes of Allah Subhanahu wa Taala because it pulls the rahmat of Allah Subhanahu wa Taala.
और अल्लाह चाहते हैं कि बंदे मेरी रहमत को खींचें.
And Allah Subhanahu wa Taala likes that the rahmat is drawn through the
महबूब इसलिए कि इसी से लोगों में हिदायत फैलेगी.
It is beloved because through this hidayah will spread in people.
ये हिदायत का जरिया और सबब है ये.
This is the means of the hidayah.
तो अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदों में हिदायत फैलने के लिए जो मेहनत है उसको मेरे कुछ बंदे करें जो मेरे पसंदीदा हों.
This is Allah Subhanahu wa Taala wants that through the effort with which the hidayah spreads in the makhluk, Allah Subhanahu wa Taala wants for people to do it so that they can become beloved to Allah.
इसलिए इसमें जो वक्त लगने का मुजाहिदा पेश आ जाए वो भी लगाना पड़ेगा.
That's why there is a sacrifice of giving time. We need to give that sacrifice.
ज़ाहिर है कि हमारे अपने औकात में से ही हमें निकालना होगा.
We have to take time from all the other things that we do.
हमारी सेहत के एतबार से जो मुजाहिदे होंगे वो भी करने पड़ेंगे.
And we have to give the sacrifice of health whatever is needed.
जो भी इस वक्त हमारी सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके एतबार से हमें मेहनत करनी पड़ेगी.
Whatever our situation, condition we are in, we have to make effort about.
माल के एतबार से जो मेहनत चाहिए वो हमें करना पड़ेगा.
Whatever sacrifice we need to give from wealth, we need to give that.
और मेरे दोस्तों, ईमान वाला तो अपनी जान और अपने माल को अल्लाह के हवाले कर चुका है.
And the person of iman, he has already given his jaan and maal to Allah Subhanahu wa Taala.
जितना वक्त अल्लाह के लिए लग जाए वो बंदा उतना कीमती है, जितना माल अल्लाह के लिए लग जाए उस बंदे का वो माल उतना कीमती है.
Says that the time and the wealth the person spent for Allah Subhanahu wa Taala, that's how profitable, valuable it becomes.
हमारी सआदत ही इसमें है कि हमारी जान कितनी लगी अल्लाह के लिए, हमारा माल कितना लगा अल्लाह के लिए, उसी पर हमारी कीमत है मेरे भाई.
The benefit for us, the value for us is that how much jaan and maal that we spend for the sake of Allah Subhanahu wa Taala.
और जितना रह गया उतना ज्यादा हमारे लिए बदकिस्मती है.
And whatever is saved from, that is so much dislike and that's so much loss for us.
जब अल्लाह बिल्कुल नहीं पसंद करता बंदे को तो ना उसका टाइम लेता ना उसका माल लेता.
When Allah dislikes somebody, Allah Subhanahu wa Taala does not take their wealth or time.
कुरान पाक में ऐसे वाकयात बयान किए गए हैं.
And there are stories in Quran Pak which talk.
Allah ने फरमाया कि उनका उठना मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैंने उनको उठने नहीं दिया.
Because Allah Subhanahu wa Taala says the close meaning of it, I didn't like them raising up, that's why I didn't let them raise up.
मुनाफिकीन के बारे में फरमाया वलाकिन करिहल्लाहु बिआतहुम फसबतहुम वकील कुदु मअल काइदीन. मुझे उनका उठना पसंद नहीं आया मेरे रास्ते में इसलिए मैंने बिठाया उनको.
He says that about the munafiqeen, Allah Subhanahu wa Taala says the close meaning of it, I didn't like them getting up in my path, that's why I didn't let them get up in my path.
Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wa la yatuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Main unka maal kyun nahi le raha hu par main namaz padte hain to susti se padte hain, iman mein inke kharabi hai, maal kharch karte hain to khushi se nahi kharch karte, to kyun lu main inka maal, mohtaj thodi hu main koi.
Why Allah Subhanahu wa Taala is not using their wealth? Allah Subhanahu wa Taala says when they perform salah with a lot of laziness, and when they spend the maal, when they spend the wealth, they do not do it likingly. Then why should I be taking it? Do I really be in? Am I really in need of this?
इसलिए हमें अल्लाह से मांगने की जरूरत है.
That's why we need to keep asking.
हम अल्लाह से दुआ भी करें कि परवरदिगार हमें महरूम ना फरमाइए.
If we keep asking Allah Subhanahu wa Taala, then Allah Subhanahu wa Taala do not take me away from this.
हमें निफाक से बचाइए आप.
And save me from
nifaq. हुजूर सल्लम ने हमें दुआ सिखाई है कि अल्लाह हमारे सीने को निफाक से पाक रखी. तो जो जांचना पड़ेगा कि कहीं मुनाफिकत वाली मुनाफिकीन की सिफात तो मेरे अंदर नहीं है, मुनाफिक तो नहीं हूं अल्लाह की तौफीक से, लेकिन उनकी सिफात आएंगे तो कब तक बचूंगा मैं. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुनाफिकीन की सिफात का असर मुझ में आ रहा है.
You need to keep checking ourselves that even though by grace of Allah Subhanahu wa Taala I'm not munafiq, but am I getting affected by the qualities or sifats of munafiq.
तो इस वजह से माल का अल्लाह के रास्ते में खर्च होने से बचाते रहना और वक्त का अल्लाह के रास्ते में लगने से बचाते रहना, यह कोई अच्छी अलामत नहीं है मेरे भाई.
That's why they keep trying to save ourselves from spending our wealth and time in path for Allah. That is not a good sign.
और जितना लग जाए उस पर उतना खुश होना है.
That the more we spend, the more we should be happy.
यह नहीं समझना है कि मैंने जाये कर दिया time.
We shouldn't be thinking that we have wasted our time.
मैंने जाये कर दिया माल.
We have wasted our wealth.
हाँ, मैं बहुत मर्तबा जाके आया, मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ. बाद लोगों की जुबान पे ऐसा भी आ जाता है.
He said that I've gone many times but I didn't benefit. Many people say this.
तुम्हें क्या पता है भाई कि तुम्हारा माल जाया हुआ, जब आखिरत में जाओगे तो पता चलेगा.
How do you know that you have wasted your wealth? When you go in akhirah you'll know about it.
अल्लाह ने फरमाया कि वो मैंने बिजनेस में लगाया है तुम्हारे.
Allah Subhanahu wa Ta'ala said that I have invested in your business.
तो जो अल्लाह ताला की बिजनेस में माल लग गया वो कैसे नुकसान में गया?
And the wealth that has been spent in the business of Allah Subhanahu wa Ta'ala, how is that lost?
इल्ला है कि आदमी अपना ईमान खराब करके बेईमान मर जाए तब है नुकसान.
He said your person dies without iman, then that is the loss.
वरना तो फिर मेरे दोस्तों जो लग गया अल्लाह के लिए वो लकी है.
There's a person who has spent for Allah Subhanahu wa Ta'ala is very lucky.
तो हमें अल्लाह से तौफीक मांगनी होगी.
We need to keep asking tawfiq from Allah.
कि अल्लाह पाक ने कितना एहसान फरमाया कि ईमान वाला बनाया.
Allah Subhanahu wa Ta'ala has made such a favor on us.
कितना बड़ा एहसान है कि हमें दीन की समझ अता फरमाई.
Allah Subhanahu wa Ta'ala has given the favor of understanding.
नमाज रोजे का पाबंद बनाया.
He has made punctual about salah.
तो अल्लाह तबारक व तआला को इन अमल का हवाला देके मांगो कि परवरदिगार जिस करम से तूने ये काम कराए उसी करम से तू अपने रास्ते में चलना भी नसीब फरमा दे.
He said that we need to keep asking from Allah Subhanahu wa Ta'ala that Allah Ta'ala, the favor with which you have given me tawfiq to do these amal, salah and others, give me tawfiq to go out in path of Allah.
Aur Allah se agar bada favor mangna hai to ye mango ki Allah puri duniya mein mujhe chalne phirne ki tawfiq de.
And if you have to ask a big favor Allah Subhanahu wa Ta'ala, you ask favor from Allah Subhanahu wa Ta'ala that Allah give me tawfiq to go all over the world.
Hazaron lakhon dollar aapke raste mein main kharch karun aise mujhe tawfiq de.
So that I can spend hundreds of thousands of dollars in your path.
Baras aapke raste mein laga dun iski mujhe tawfiq do.
Give me tawfiq to spend years and years in your path.
Duniya ke kone kone chappe chappe mein aapke bandon tak jaake aapki badhai sunaun iski tawfiq de mujhe.
To go every corner of the world and talk about your greatness to your creation, Allah give me this tawfiq.
Jitne ikhlas se hum bolenge na unko wo sun lete.
The more ikhlas that we use, Allah listens to us.
Sirf baat ye hai ki main kitne dil se bol raha hu ye baat Allah se.
The thing is how much sincerity do I have in asking from Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Huzur Pak Allah tbarak wa taala ne sahaba ki tareef farmayi ki jo dil mein unke hota tha itna pakka hota tha ki main gawahi deta hu ki wo sachche hain. Allah farma rahe the.
Allah Subhanahu wa Ta'ala says about sahaba radhiyallahu anhum ajmain that whatever you need to have, they need to have in their heart was so strong that Allah Subhanahu wa Ta'ala himself is bearing witness of it.
Rijalun sadaqu ma'ahadullah alayh. Kya log hain jinhone jo Allah se wada kiya tha wo sach kar diya. Allah farma rahe.
And Allah Subhanahu wa Ta'ala himself saying that what are this beautiful people they are, that whatever they have committed to Allah Subhanahu wa Ta'ala, they did it.
फिर उसके बाद अल्लाह फरमा रहे फमिनहुम मन कदा नहबहु, बाज हुए हैं जिन्होंने अपनी तमन्ना पूरी कर दी.
And Allah Subhanahu wa Ta'ala, after this, there are some who have fulfilled their desire.
उनके दिल में था कि वक्त आए तो बताएंगे कि हम कैसे जान देते हैं आप पे.
And then it was in their heart that when the time comes, that how much we sacrifice for you.
हम अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कैसे मिटाते हैं.
And how we destroy ourselves in the path.
कैसे दुश्मन के सामने खड़े होते हैं.
And how we stand in front of them.
कैसे उसके तीरों तलवार खाते हैं.
And how we face their swords and arrows.
उसके वास्ते कितने ज्यादा मार खा सकता हूँ मैं.
And he said that how much more I can be beaten because of
that. देखा गया कि 90 मार उनके सीने पे देखे गए.
And it seems that the 90 wounds on their chest.
खंजर के वार, तीर के वार, सब चीजों के वार.
The swords and the wounds from the arrows.
उनके दिल में तमन्ना थी कि वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा कि मैं खुदा को कितना चाहता हूँ.
And he said that they had this desire that when time comes, I'll show Allah Subhanahu wa Ta'ala how much I love Allah.
जिसने अल्लाह के लिए अपने को कुर्बान कर दिया मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला तो उसके इतनी किस्मत चमका देंगे कि जो बयान तसव्वुर से बाहर है.
Whoever sacrifices himself for Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala will make the destiny so bright that we can't even imagine.
Hamza radhiyallahu ta'ala ne shaheed ho gaye.
Hamza radhiyallahu ta'ala became martyred.
Haan, kaan naak ka musra kiya gaya, unke naak kaan kaat diye gaye.
And his nose and ears were cut.
Jab Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ne dekha to bardasht se bahir ho gaya.
When Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saw it, he could not bear it.
Aapne farmaya ki agar mujhe meri phoopi ke हजरत हमजा की बहन के अगर हमजा की बहन की बर्दाश्त न करने का अंदेशा न होता तो मैं हमजा को दफन करने नहीं देता ताकि इसके नाक इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े जानवर खा जाएं जंगल के और कल कयामत में मैं कह सकूं कि परवरदिगार देख तेरे लिए क्या हुआ है.
He said that if I would have not have the consideration for the sister of Hamza radiyallahu anhu, that she would not be able to bear this, I would have let the pieces of Hamza radiyallahu anhu lie there and be eaten by the animals of the jungle, so that on the day of judgment I can say to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah, see what has happened for your sake.
کیونکہ جو جس حالت میں جائے گا اللہ کے لیے اس حالت میں اٹھایا جائے گا.
The person, the way he will die in this dunya because of the sake of Allah, that's how he will be raised in the day of judgment.
اور اس دن پھر اللہ پاک دکھائے گا اس کا مقام کیا ہے.
And on that day Allah Subhanahu wa Taala will show what his
اس کو اللہ چاہتا کتنا ہے.
And how Allah likes him.
اس کو نوازے گا کتنا.
And how much he gives him.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ کس حالت میں حمزہ کو اللہ کے دربار میں بھیجنا چاہتے
ہیں. And this shows that how Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم wanted to send Hamza رضی اللہ عنہ in the court of Allah.
اور کس حالت میں میدان حشر میں حمزہ کا ہاتھ پکڑنا چاہتے تھے.
And in what condition he would want to hold the hand of Hamza رضی اللہ عنہ.
اور پیش کرنا چاہتے تھے کہ دیکھ لو میرے چچا کو.
And he wanted to present him in front of Allah Subhanahu wa Taala, see my uncle.
منهم من قضى نحبه. اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کر دی انہوں نے اپنی تمنا.
And Allah Subhanahu wa Taala says these are the people who fulfill their desire.
پھر فرمایا ومنهم من ينتظر. بعض صحابہ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں.
And says that there are some who are waiting for their chance.
اور اس کے بعد کا جملہ اس سے بڑا عجیب ہے. فرمایا وما بدلوا تبدیلا. ان کے اندرون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ فرمایا.
He says that after this Allah Subhanahu wa Taala says there is no change inside them.
جو جذبہ ہے وہ سچائی ہے.
And whatever desire they have it is true.
جو اندر ہے وہ باہر ہے.
Whatever is inside that's outside.
میرے دوستو ایسا اخلاص تھا وہاں پہ.
And this is how
اخلاص. اللہ پاک اس کا کوئی صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ہمارے نیتوں میں بھی ویسے ہی خلوص ہو. ہمارے جذبات بھی اللہ پاک ویسے پورے یعنی بڑے بنائیں.
May Allah Subhanahu wa Taala make our desires that
bigger. اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
May Allah give us tawfiq to fulfill them.
اس لیے ہمت اور حوصلہ کرو اور ارادے کرو, نام لکھاؤ کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہم سب جائیں گے.
And if we stand up, inshallah, make intention that we all go in path of Allah.
دور اور دیر کے لیے جائیں.
We'll go far and for long, inshallah.
حق تعالی مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے.
May Allah Subhanahu wa Taala give us tawfiq.